بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین، السلام علیکم. میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے افغانستان سے متعلق امداد دینے والے ملکوں کی کانفرنس. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. جناب، پچھلے ہفتے 3 دن کے وقفے سے افغانستان کی دارالحکومت کابل میں 2 اہم بین الاقوامی اجلاس ہوا. ایک کا نام ریکا اور دوسرے کا نام سام، اور ظاہر ہے دونوں کا کام تقریباً، یا دونوں کا نام کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا، یہی کہ افغانستان کی تعمیر نو، ترقی و پیش رفت اور مدد دینے والے ممالک کے یہ اعلیٰ حکام اور اعلیٰ عہدیدار تھے جن کا اجلاس ہوا. ایک اجلاس کے نام ریکا تھا اور دوسرے کا سام. بہرحال، افغانستان کو امداد دینے والے ملکوں کے اجلاس اس سے پہلے کئی بار ہو چکے ہیں. ٹوکیو اجلاس ہوا، بون اجلاس ہوا، لندن اجلاس ہوا، اور خود افغانستان کے دارالحکومت کابل میں بھی اجلاس ہوا. اگر آپ کو یاد ہو تو ٹوکیو اجلاس میں اس بات کا اعادہ یا وعدہ کیا گیا تھا، غالباً 2012 کی بات ہے، کہ 2015 تک افغانستان کو 16 ارب ڈالر امداد فراہم کی جائے گی. 2015 تقریباً اب نصف سے زائد ہو چکا ہے، لیکن اگر جب امداد دینے والے ملکوں کے وعدے اور ان کے عمل پر نگاہ ڈالتے ہیں تو شاید وعدہ تو انہوں نے کیا تھا لیکن عمل شاید 50% یا 25% تک بھی پورا نہیں ہو سکا. اور اس اجلاس میں جو ٹوکیو میں ہوا تھا، تو اس وقت افغانستان کے تعلق سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے سبھی ملکوں پر زور دیا تھا کہ افغانستان میں سرمایہ کاری جاری رکھنا اشد ضروری ہے، اور اگر یہ سرمایہ کاری جاری نہ رکھی گئی تو گزشتہ 10 برسوں کی محنت رائے گا اور برباد ہو جائے گی. کیا افغانستان کو امداد دینے کا وعدہ کرنے والے ملکوں نے سرمایہ کاری کے تعلق سے بھی افغانستان میں سرمایہ کاری کرنے کے بارے میں اپنے وعدے کی پاسداری کی یا کسی حد تک عمل کیا؟ 60 سے زائد ملکوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ افغانستان کو امداد دیں گے، اور یہ مجموعی رقم 2015 تک 16 ارب ڈالر کی ہوگی. لیکن اگر اس کا نصف بھی افغان عوام یا افغان حکومت کو دیا گیا ہوتا اور امداد دینے والے ملکوں نے خلوص دل کے ساتھ اپنے وعدوں پر عمل کیا ہوتا، تو آج افغانستان کی یہ صورتحال نہ ہوتی جو خبروں میں سنی جا رہی ہے، یا جو قریب سے افغانستان کی ابتر اور انتہائی افسوسناک صورتحال کا لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں. بہرحال، یہ ایک اجلاس پھر ہوا، یا یوں کہا جائے کہ 2 اجلاس پھر ہوئے ان ملکوں کے جنہوں نے افغانستان کی تعمیر و ترقی اور افغانستان کو امداد دینے کے لیے اپنا وعدہ کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ ہم افغانستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور تعاون کریں گے. دیکھنا یہ ہے کہ اس طرح کا اجلاس آیا صرف سیکورٹی وجوہات کی بنا پر قابل غور اور مفید کہا جا سکتا ہے، یا عملی اعتبار سے بھی اس اجلاس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوا. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے، مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ ترتیب دی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
افغانستان کے کابل شہر میں گزشتہ 3-4 ستمبر کو علاقائی اقتصادی تعاون ریکا کا 6ٹھا اجلاس منعقد ہوا، جس میں 30 ملکوں اور 40 علاقائی و عالمی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی. اس کے ساتھ ہی افغانستان کی امداد کرنے والے ملکوں کا اجلاس بھی کابل میں منعقد ہوا، جس کے دوران شرکا نے ٹوکیو اور لندن میں امداد کرنے والے ملکوں کے وعدوں کا جائزہ لیا. کابل میں منعقد ریکا اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم کے قومی سلامتی کے مشیر سرتاج عزیز اور ہندوستان کے خارجہ سیکرٹری نے شرکت کی. ریکا کا پہلا اجلاس سن 2005 میں کابل میں منعقد ہوا تھا اور اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہر دو سال کے بعد ہندوستان، پاکستان، ترکی اور تاجکستان میں سے کسی ایک ملک میں یہ اجلاس منعقد ہوگا۔ ریگا کا پانچواں اجلاس تاجکستان کے دارالحکومت میں منعقد ہوا تھا۔ اجلاس کی افتتاحی تقریب میں افغانستان کی وزارت خارجہ میں سیاسی امور کے ذمہ دار حکمت خلیل کرزئی نے کہا کہ ترقی و پیش رفت اس وقت ہوگی جب علاقائی ملک ایک ساتھ مل کر کام کریں اور ترقی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے 10 برسوں کے دوران علاقے میں معاشی مواقع میں اضافہ ہوگا اور تمام ملکوں کو اقتصادی تعاون کے مواقع کی شناخت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ اس اجلاس میں افغانستان کے وزیر اقتصادیات عبدالستار مراد نے زور دیا کہ علاقے میں اقتصادی مواقع بے شمار ہیں، لیکن ان مواقع سے مساوی طور پر فائدہ اٹھانے کے مواقع فراہم ہونے چاہیے۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران علاقائی ملکوں میں اقتصادی تعاون میں فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کو علاقائی ملکوں سے توقع ہے کہ وہ افغانستان کے راستے توانائی کی منتقلی، ریلوے لائن سے علاقائی ملکوں سے اسے جوڑنے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کابل کے ساتھ تعاون کریں گے۔ انہوں نے افغانستان کی تعمیر نو میں ایران کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران وہ پہلا ملک تھا جس نے ریلوے لائن کے شعبے میں افغانستان کے ساتھ تعاون کیا۔ کابل میں ریگا اجلاس کے فوراً بعد افغانستان کی مدد کرنے والے ملکوں کا بھی اجلاس ہوا، جس کے دوران اس ملک کے صدر اشرف غنی نے کہا کہ لندن اجلاس کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب وہ اپنے بین الاقوامی شرکا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ لندن اجلاس کے وقت ہماری حکومت نہیں تھی، لیکن آج قومی آشتی کی حکومت نے عالمی برادری کے سامنے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم ایک ٹیم کی حیثیت سے اپنے ملک کی تعمیر نو کے سلسلے میں ایک نظریہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے لندن اجلاس میں ادارتی بدعنوانی کے خلاف جد و جہد کا وعدہ کیا تھا، لہذا ہم نے بدعنوانی کے خلاف جد و جہد کو اپنی اولین ترجیحات میں رکھا ہے۔
ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ اب چلتے ہیں سیدھے کابل جہاں پر موجود ہیں۔ کابل یا یوں کہا جائے افغانستان کے ممتاز تازہ نگار جناب ظفر مہدی صاحب، السلام علیکم جناب۔ جی ظفر مہدی صاحب، السلام علیکم۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور جی ظفر مہدی صاحب آواز سن رہے ہیں آپ؟
آواز آ رہی میری آپ کو؟ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ ظفر مہدی صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو یہ 3 دن کے وقفے سے 2 اہم اجلاس ہوئے کابل میں، ریکا کا اور سام کا، ظاہر ہے کہ سام جو ہے وہ ڈونر ممالک کے اس میں اعلیٰ حکام یا مندوبین موجود تھے، ان دونوں اجلاس کی اہمیت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اس کو کابل میں؟
دیکھیے، جہاں تک یہ دور کی بات ہے، جو اقتصادی تعلقات اور اقتصادی مسائل ہے بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں ہر ایک ملک کے لیے۔ ایک ملک کی ترقی جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی اکنامک اسٹیٹ، اکنامک کنڈیشن، اقتصادی حالت پہ۔ اور جہاں تک اقتصادی حالت کی بات ہے، اگر اچھی ہے تو گروتھ ہو جاتی ہے، اگر اچھی نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انمپلائمنٹ ہوتا ہے، پاورٹی ہوتی ہے، اور جو غریبی ہے یا بے روزگاری ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہوتا ہے دہشت گردی یا جو کرائم ہوتے ہیں۔ جہاں تک اکنامک پروگرس کی بات ہے، وہ تب تک پاسبل نہیں ہوتا جب تک آپ کے جو ریلیشنز ہیں، آپ کے تعلقات باقی ملکوں سے اچھے نہیں ہوتے، خاص کر جو آپ کے ہمسایہ ملک ہے۔ جہاں تک اس کانفرنس، 2 کانفرنس کی بات ہے، جو پہلی کانفرنس تھی ریکا، اس کا مین مقصد جو تھا وہ تھا اکنامک کوآپریشن کو مضبوط کرنا۔ جو کنٹریز اس خطے میں ہیں، ریجن میں ہیں، ساؤتھ ایشیا میں، سینٹرل ایشیا میں، ان ملکوں کے بیچ میں کوآپریشن کو مضبوط کرنا۔ اور دوسری کانفرنس جیسے آپ نے کہا کہ ڈونر کنٹریز کی تھی، ان کو جو کمٹمنٹ پہلے ہوئی تھی اس کو دوبارہ ایگزامن کرنا تھا، اور جو فردر اسسٹنس ہے ان کو پلیج کرنا تھا۔ پہلی کانفرنس کی بات اگر میں کروں جو، تو پریزیڈنٹ غنی نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے لاسٹ ایئر، انہوں نے بار بار اس ریجنل کوآپریشن کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے میں ہو، چاہے وہ اقتصادی حالات کو مزید بہتر بنانے کی بات ہو۔ جہاں تک اکنامک ریجنل کوآپریشن کی بات ہے، یہ ہے کہ جیسے جو کنٹریز ہیں ریجن میں، मिला के आगे बढ़ना चाहिए। ये है मतलब क्रक्स जो है, ये है रीजनल कॉपरेशन का। ये सिक्स कॉपरेशन, ये सिक्स रेका की सिक्स कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले दुशानबे में, इस्तांबुल में, इस्लामाबाद में, दिल्ली में और फिर से काबुल में हुई है सिक्स। जो थीम था इस कॉन्फ्रेंस का वो इंटरेस्टिंग था, वो था सिल्क रूट थ्रू अफगानिस्तान। जो डेलीगेट्स आए थे काफी मुल्कों से, उसमें ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, सब कंट्रीज से आए थे लोग, डेलीगेट्स। उनकी जो डिस्कशंस है, उनका जो डिस्कशंस का फोकस था उन बड़े प्रोजेक्ट्स पे जो कि साउथ एशिया को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करेंगे थ्रू अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान बीच में पड़ता है। अफगानिस्तान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत ही मायने रखती है पूरे रीजन के लिए। इस कॉन्फ्रेंस में काफी इश्यूज डिस्कस हुए। जो बड़े इश्यूज थे वो था कि इस सिल्क रोड को कैसे हम रिवाइव करें, कैसे हम उसको नई एक जिंदगी दे दें। क्योंकि जो सिल्क रोड है, आपको पता होगा कि जो पुराने जमाने में ये तिजारत का बहुत इंपॉर्टेंट एक रूट हुआ करता था। इस रूट ये रूट जो था, ये बहुत बड़ा फैक्टर था डेवलपमेंट के लिए। जो चाइनीज सिविलाइजेशन है, इंडियन सब की सिविलाइजेशन, या पर्शिया की, पर्शियन सिविलाइजेशन की, इनकी इन सारी सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में बड़ा रोल प्ले जो किया था, वो किया था सिल्क रोड ने। क्योंकि ना सिर्फ इसमें तिजारत होता था, बल्कि जो कल्चर्स होते थे, कल्चर हर मुल्क का कल्चर, जो इस रूट में जो कंट्रीज आती थी उनके जो कल्चर्स है वो ट्रांसमिट थे। इस रूट को कैसे रिवाइव किया जाए, ये बहुत बड़ा डिस्कशन था इस रेका कॉन्फ्रेंस में। बाकी इशू जो डिस्कस हुए थे वो है कि तापी प्रोजेक्ट, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया के बीच में, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि वो काफी सालों से ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ हैसल्स, कुछ ना कुछ इश्यूज उसमें आते रहते हैं। रेल रोड कैसे बनाया जाए पांच रीजनल कंट्रीज के बीच में, और लाजवर्द रोड जो है उसको कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। लाजवर्द रोड अफगानिस्तान को यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान के थ्रू हो जाएगा। चाबहार पोर्ट पे भी डिस्कशन हुआ, जो कि ईरान में है, जो कि ऑल्टरनेट ट्रांजिट रूट बन जाएगा अफगान जो ताजर है, क्योंकि अभी वो बिल्कुल डिपेंडेंट है पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के जो ट्रांजिट रूट है वो मेन ट्रांजिट रूट है उनके लिए, जो गुड्स है बाकी कंट्रीज में ले जाने के लिए। जो चाबहार पोर्ट है ये दूसरा ऑल्टरनेट बन जाएगा उनके लिए, और उनके लिए काफी राहत होगी। और जो जो डिस्कशन हुए प्रेसिडेंट गनी और ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर के बीच में उनकी मीटिंग के दौरान, उसमें भी चाबहार पोर्ट का जिक्र हुआ,
जी,
और
मैं फिर
ईरान
हाजिर
के
हूँगा
मिनिस्टर
आपकी
ने
खिदमत में। जफर मेहदी साहब, चलते हैं इस वक्त कराची इस रोड, जहाँ पर मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर सरकर्दा तर्जनगार जनाब आगा मसूद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। आगा साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा कि रेका कॉन्फ्रेंस हो या डोनर मुल्कों की कॉन्फ्रेंस जो अफगानिस्तान में 3 दिन के अंदर दोनों कॉन्फ्रेंसें हुई, और जाहिर है कि रेका में ये कहा गया कि अफगानिस्तान को एक पुल की हैसियत से जो है वो करार दिया जाए, ताकि एक दूसरे मुल्कों का रابطہ जो है बरकरार हो सके, और अफगानिस्तान को एक पुल के तौर पर तस्लीम किया जाए, ताकि वहाँ से जो है वो राहदारी हो सके और आने जाने का रास्ता जो है वो आसान हो सके एक दूसरे के मुल्कों में। जाहिर है कि कॉन्फ्रेंस थी और आला मंदोबीन और आला हुकाम उसमें मौजूद थे, तो बात की हद तक तो बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन अफगानिस्तान जैसे मुल्क को मौजूदा सूरत हाल में कैसे एक पुल के तौर पर ये ममालिक खुद तस्लीम करते हैं, जो कि देख रहे हैं कि वहाँ पर दहशतगर्दी है, नाअमनी है और बदअमनी है। तो इस इजलास का क्या मकसद हो सकता है? क्या अमली तौर पर भी बदअमनी को ख़त्म करने के लिए भी ये ममालिक कुछ इकदाम करेंगे, या सिर्फ यही कहकर इकतफा करेंगे कि अफगानिस्तान को एक पुल के तौर पर हम तस्लीम करते हैं इकतसादी राहदारी के लिए?
अरिजीत साहब, ये बड़ा आपका बड़ा अहम सवाल है, और मैं आपकी बात से इतफाक़ करता हूँ कि ये जो दो कॉन्फ्रेंस हुई हैं, इन दोनों कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासद नहायती मस्बत थे, बहुत खुशाइन थे। मैं इन दोनों कॉन्फ्रेंस को इंटरनेट पे भी देख रहा था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि आलमी बरादरी जो है वो अफगानिस्तान के बारे में वो एक ऐसी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से एक इलाकई ताउन को फ़रोग मिले, और इसके साथ साथ जो डोनर ममालिक हैं वो अफगानिस्तान को पैसे दें, ताकि उसकी जो मईशत है जो कि बहुत ही कमज़ोर है उसको सहारा मिले। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जो अगराज मकासद हैं ये इंतहाई मजबूत हैं, खूबसूरत हैं, इंसान दोस्ती पर मबनी हैं, लेकिन सवाल ये होता है कि अफगानिस्तान में किस तरीके से अमन कायम हो, और किस तरीके से अफगानिस्तान की जो हुकूमत है वो उसमें जो जिस किस्म का करप्शन है, और जो पिछली हुकूमत थी अशरफ गनी साहब के से पहले उसमें भी मासिव करप्शन था, एक तो यह है कि जो डोनर ममालिक हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं, बल्कि बात करते हैं सरगोशियों में कि जब तक अफगानिस्तान के अंदर करप्शन ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक कि जो दोनों ममालिक हैं वो पैसे कैसे देंगे। आपने फरमाया था कि 15 बिलियन डॉलर जो है उसमें वायदा किया गया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि 15 बिलियन डॉलर क्या, अफगानिस्तान की हुकूमत ने 4 बिलियन डॉलर का मुतालबा किया था जो अभी तक नहीं आए, और आपको मालूम है कि इस वक्त इंटरनेशनल रिसेशन जो है वो बहुत बढ़ गया है, डिसप्लेस पर्सन यूरोपियन यूनियन में जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की पूरी इकोनॉमी जो है वो उन डिसप्लेस पर्सन के लिए मुख्तस हो रही है, इसी तरीके से अमेरिका जो है वो उन डिसप्लेस पर्सन के सिलसिले में यूरोपियन यूनियन की मावनत कर रहा है। तो मैं ही नहीं समझ रहा कि अफगानिस्तान को जो मतलूबा रकम है, मैं कहता हूँ 2 बिलियन डॉलर भी मिल जाए तो वो मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं है, लेकिन एक चीज़ मुमकिन हो सकती है कि सरमाकारी के सिलसिले में चीन ने 5 बिलियन की सरमाकारी की है, हिंदुस्तान ने 2.5 बिलियन की सरमाकारी की है, इसी तरीके से ईरान की सरमाकारी है और ममालिक की भी सरमाकारी है। अमेरिका ने तो 1 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए लेकिन इसके बाद भी उनके वो नतायज नहीं निकल सके, ना तो जमहूरियत कायम हो सकी, ना कोई माशरे में तब्दीली आ सकी, लेकिन को 1 ट्रिलियन डॉलर जो है वो ज़ाया चले गए। ये दूर की बात है कि मुसलमानों ने मुसलमानों का खून ज़रूर किया, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब तक के अफगानिस्तान के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी जो है मजबूत नहीं होगी उस वक्त तक अगर आप सरमाकारी की बात करेंगे वो भी मुमकिन नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल डोनर जो हैं वो अपने ख़जाने खोल देंगे और अफगानिस्तान को पैसे दे देंगे जो वो उससे मुतालबा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मुमकिन है कि अगर इलाके ही तावन हो जाए, जैसे पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, ईरान है और सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, अगर इनके दरमियान तावन होता है और तावन के अंदर यह है कि ये इखलास पैदा हो कि हमें अफगानिस्तान की सूरत हाल में तब्दीली लानी है, इसकी तामीर नो में अपना किरदार अदा करना है, तो मैं इस सिलसिले में बड़ा पुरुद हूँ कि अगर काश ऐसा हो जाए। और मैं ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि जितने भी इंटरनेशनल डोनर्स हैं और जो जो अफगानिस्तान की तामीर नो के सिलसिले में दिलचस्पी रखते हैं उनको कम से कम ये चाहिए कि इलाकई तावन को मजबूत करें, क्योंकि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान के एडवाइज़र भी मौजूद थे, ईरान भी मौजूद था, पाकिस्तान के सरताज अजीज साहब भी मौजूद थे और इसके अलावा सेंट्रल एशियन के लोग भी मौजूद थे। मैं ये समझता हूँ जब ये मिल बैठ के तशवीश का इजहार कर सकते हैं, अफगानिस्तान की तामीर नौ के सिलसिले में बातचीत कर सकते हैं और वहाँ की सिक्योरिटी के सिलसिले में बातचीत कर सकते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर इलाकई तावन क्यों नहीं होता। तो अगर ये इलाकई तावन हो जाता है तो दहशतगर्दी भी ख़त्म होगी और उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई हो रही है, जो तालिबान है उन तालिबान को मज़ाकात की टेबल पे लाया जाए, जैसा कि पाकिस्तान ने कोशिश की, अमेरिका ने कोशिश की, चीन ने भी कोशिश की, तो इस तरीके से अगर वो मज़ाकात की टेबल पे दोबारा आ जाते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अफगानिस्तान के आवाम को भी खुशहाली मिलेगी, अफगानिस्तान से गुर्बत भी ख़त्म होगी और अफगानिस्तान एक मजबूत मुल्क की हैसियत से जो है वो सामने आएगा। ये दूसरी बात है कि इसमें एक अरसा लगेगा लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर इब्तिदा होनी चाहिए और ये उन मुल्कों की जिम्मेदारी है कि जिन्होंने अफगानिस्तान के अंदर सरमायाकारी की है, जो अफगानिस्तान की तामीर नो में इंटरेस्टेड है, और ये दो कॉन्फ्रेंस हैं मैं समझता हूँ इसके अच्छे और मजबूत नतीजे निकलेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त चलते हैं दिल्ली स्टोर जहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त हिंदुस्तान के सीनियर और सरकर्दा तज़ नगार और मुमताज़ दानिश्वर और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे इस्लामी मारिफ के सदर प्रोफेसर इक़्तदार मोहम्मद खान साहब। अस्सलामु अलैकुम जनाब। प्रोफेसर साहब, अभी आगा मसूद हुसैन साहब पाकिस्तान के सीनियर तज़ नगार फरमा रहे थे कि सरमाकारी अगर होगी तो दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसके बरक्स बाद लोगों का ख्याल ये है कि पहले दहशतगर्दी ख़त्म हो फिर सरमाकारी का रास्ता हमवार हो, तो मंतिक और फ़लसफ़े की इस्तिलाह में तो इसे दौर कहते हैं और दौर जो है वो मुहाल होता है। कुछ कहते हैं कि पहले दहशतगर्दी ख़त्म हो, कुछ कहते हैं नहीं पहले सरमाकारी हो तब जो है वो क्या कहते हैं दहशतगर्दी ख़त्म होगी, और कुछ कहते नहीं पहले दहशतगर्दी ख़त्म हो तब सरमाकारी होगी, तो आखिर ये जो मुहाल है ये मुमकिन कैसे बने?
देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें दहशतगर्दी पहले ख़त्म हो या मईशत का मसला पहले हल हो, ये तो वही बात हो गई कि अंडा पहले आए या मुर्गी पहले आई। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात एक को अगर हम सकें, हमें दोनों रूट पे काम करना होगा, हमें दहशतगर्दी के कॉजेस को भी देखना होगा, दहशतगर्दी को भी रोकने की और दहशतगर्दी को ख़त्म करने की कोशिशें करनी होंगी, और हमें मईशत के सिलसिले में भी जो चीज़ें हमें अभी जैसे जिक्र आ रहा था कि डोनर कंट्रीज़ ने एक वायदा किया था और वो नहीं आया, तो उसके कॉजेज देखे जाएंगे कि उन्होंने अपना वायदा पूरा क्यों नहीं किया। मोटी सी बात लगती है, अभी हमारे पाकिस्तान के तजिया निगार ने कहा कि चूंकि दुनिया में इस वक्त रिसेशन आया हुआ है इसलिए ये प्रॉब्लम आई। मैं नहीं समझता, मुझे लगता है कि जिस वक्त हम लोग डोनर कंट्रीज़, चूँकि पहले भी जो अमेरिका का रोल रहा अफगानिस्तान के अंदर, कि अमेरिका ने तय तो किया कि हमने इतने करोड़ इतने अरब इतने खरब देने हैं, लेकिन जब वहाँ अखराजात का मसला आता है, वहाँ पर पॉलिसी बनने का मसला आता है, तो उसमें बजाय लोकल जो वहाँ के जानकार हैं, लोकल जो ज़रूरतें हैं उनको सामने रखा जाए। अमेरिका, मुझे जो अभी तक वहाँ का तजर्बा है कि वो अमेरिका खुद अपनी पॉलिसी खुद मुरतब करता है कि मुझे किस फील्ड पे कितना मैं आपको कर्ज दूंगा, किस फील्ड पे आपके कितना खर्च करूँगा, मैं लाइट के लिए कितना खर्च करूँगा, मैं सड़क के लिए कितना खर्च करूँगा, मैं इंडस्ट्री के लिए कितना खर्च करूँगा। तो ये जब पैसा देने वाला खुद ये तय करेगा कि मुझे वहाँ पर पॉलिसी किस तरह की बनानी है, तो जाहिर सी बात है कि वो पैसा अमेरिका खरबों रुपया दे दे, उससे अफगानिस्तान का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब आप ये तय कर लेंगे कि आपको एक इंडस्ट्री कायम करनी है, उसमें 100 वर्कर रख रहे हैं, 100 में से 50 वर्कर या 20 वर्कर अमेरिका के होंगे और उनकी तनख्वाह ये होगी, और जो अफगानिस्तान के वर्कर होंगे उनकी तनख्वाह ये होगी, चाहे वो उनसे सलाहियतों में कम हो या ज्यादा हो, तो इससे तो और खल्फिशार बढ़ेगा और नाम दुनिया में होगा कि आपने बहुत मदद की, लेकिन अमलन आपको उससे कुछ कोई रिजल्ट नजर नहीं आएगा, जहाँ तक अमेरिका की बात रही। अब रहा कि दूसरे जो यूरोपियन ममालिक थे, डोनर ममालिक थे, जिन्होंने अपना तो उनके बारे में तजिया किया इस सेकंड कॉन्फ्रेंस के अंदर अभी अफगानिस्तान के अंदर, तो मुझे लगता है कि उसके रूट कॉज देखने चाहिए कि किस वजह से डोनर ममालिक ने नहीं दिया। सीरिया की प्रॉब्लम जो इस वक्त शरणार्थी का मसला चला आ रहा है, इसके अलावा भी उनकी अपनी इकोनॉमी भी कोई इस वक्त बहुत ज़्यादा यूरोप की अच्छी नहीं है, अमरीका में भी इकोनॉमी पर काफ़ी जद लगी है। तो मुझे लगता है कि जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे उस तरह से नहीं हुए, तो रूट कॉज को तलाश करना चाहिए, और कम से कम इस कॉन्फ्रेंस का शायद मकसद यही था कि कॉज भी तलाश हो और उनको फिर से ये उनसे वायदा लिया जाए कि भाई जो आपने वायदा किया था उस पर। जहाँ तक पहली कॉन्फ्रेंस का मसला है, जहाँ इकोनॉमिकल, जिसमें हमने सिल्क रूट की बात आई, अभी अफगानिस्तान की तजिया निगार की बात आई, तो जाहिर सी बात है कि उसमें यह भी तय हुआ कि तुर्कमानिस्तान से एक रेलवे लाइन चलेगी जो अफगानिस्तान होती, पाकिस्तान होती, दिल्ली तक पहुँचेगी। तो जाहिर हम सब जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट किसी भी मुल्क का, अगर समंदर के ज़रिए से हो या ज़मीनी, जब तक मजबूत ना हो, जब उस वक्त तक वो मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। अफगानिस्तान कुदरती तौर पर कुछ इस तरह से है कि उसके पास ना तो कोई समंदर है और ना ही उसके यहाँ कोई बहुत बेहतर सड़कें हमें नज़र आती हैं, चूँकि पहाड़ी इलाका काफ़ी नज़र आता है वहाँ पर। तो इस नुक्ते नज़र से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और तुर्कमानिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह का, सेंट्रल एशिया के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, बड़ा अहम रोल है अफगानिस्तान के साथ। चूँकि अफगानिस्तान की तरक्की, अफगानिस्तान का डेवलपमेंट, अफगानिस्तान से जो वहाँ आतंकवाद है उसकी कमी, उसको रोक, उसकी गिरफ्त, इन चारों पांचों मुल्कों के लिए बड़ा अहम और बड़ा इनकी ज़रूरत है अफगानिस्तान को। जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि आतंकवाद या जो वहाँ पर जो होल्डबाजी हो रही है उसके अंदर भी मुझे लगता है कुछ जो अमेरिकन पॉलिसियाँ थीं उनका बहुत दखल रहा है। इससे पहले करजई सरकार रही दरअसल, और अब ये सरकार आई है, इन लोगों की पॉलिसियाँ अपने मुल्क की वफा, मैं समझता हूँ, मुझे जो अभी तक मुझे, मैंने इन लोगों को गौर से देखा, करीब से पढ़ने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, जो भी सदर बन जाता है उसकी जो अमेरिका या अमेरिका नवाज जो मुल्क हैं जो उनको सपोर्ट करके वहाँ तक लाते हैं, तो उनका पहला उनका हिजन इंजा यही होता है कि उन मुल्कों की पॉलिसी क्या है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कि करजई साहब अमेरिका से मजीद कांटेक्ट के उसमें जो था फौजी मामला उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे ही अशरफ गनी आए उसको उस मसले को हल कर दिया, अमेरिका की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। तो जब तक इस तरह वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर हैं, जो हुकूमत में अरबाब इख्तदार के लोग हैं, जब तक वो अपने मुल्क के मसाइल के बजाय अमेरिका और बरतानिया और यूरोप के ममालिक के मफादात को नज़र रखते हुए उसके हिसाब से चलेंगे, तो अफगानिस्तान का मुझे लगता नहीं कि चाहे कितनी अमेरिका वहाँ फ़ौज पड़ी रहे या कितने भी डोनर उनको मिल जाए, चाहे कितना भी उनके यहाँ मसाइल अब हल करने की बात करे यूरोपियन यूनियन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई किसी तरह का हल होगा। चूँकि जब तक वहाँ के नुमाइंदे अरबाब इख्तदार के लोग अपने मुल्क की आवाम के जो मसाइल हैं उनको सामने रखते हुए अपने फैसले नहीं करेंगे, और कहीं भी आप जाके देखिए, चाहे ये अफगानिस्तान का मसला नहीं है, अफ्रीकी ममालिक में देखिए आप, इसके अलावा एशिया के दूसरे ममालिक में जहाँ ये इस तरह की चीज़ें, दहशतगर्दियाँ सामने आ रही हैं, उनके पीछे सबसे बड़ा मसला यही होता है कि आवाम माशी तौर पर बदहाल होती है, आवाम माशी तौर पर कमज़ोर होती है, खाने पीने के लाले होते हैं, सर्विसेज होती नहीं है, तिजारत होती नहीं है, एग्रीकल्चर के मौके पूरे फराम होते नहीं है, जिसकी वजह से दहशतगर्दी की तरफ लोग आसानी से, नौजवान तबका निकल जाता है चंद बुरे लोगों के साथ, फिर एक बड़ा ग्रुप बन जाता है। और सबसे आसान है मज़हब का नाम ले देना। कहीं भी आप देखिए, किसी भी मुल्क में देखिए, चाहे वो इस्लाम मुसलमानों का मामला हो या दूसरे मजाहिब का भी मामला हो, जब हम उसको मज़हब से जोड़ देते हैं अपनी जद्दोजहद को दहशतगर्दी की, तो उसको फिर वो जिहाद और दूसरा के बहुत सारे नाम दे दिए जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अफगानिस्तान ही नहीं, दुनिया के हर मुल्क के अंदर जब तक मईशत पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, लोकल ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, वहाँ तिजारत के मौके फराम नहीं किए जाएंगे, वहाँ सर्विसें नहीं फराम की जाएंगी, वहाँ एग्रीकल्चर के लिए मौके फराम नहीं किए जाएंगे, उस वक्त तक दहशतगर्दी कम नहीं होगी। और दहशतगर्दी कम करने का सबसे अहम जरिया यही है कि आप लोगों के पेट में रोटी डाल दीजिए। जब पेट में रोटी होती है, आराम से बिस्तर मिलता है सोने को, तो कोई बंदूक उठाने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि बंदूक उठाने का मतलब ही यही होता है कि आपको या तो दहशत में पहाड़ों में रहना है, जंगलों में रहना है, छुप के रहना है, हर वक्त डरते रहना है, और आपको लगता है कि हम कब पता नहीं कितने दिन के मेहमान हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी सफाया होना है, हमें भी मौत के बहुत करीब, मौत तो बरहक है, लेकिन जिसे हम कहते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाना है वक्त से पहले, जिसको कभी कभी कहा जाता है। तो कोई भी शख्स जिसका पेट भरा हो, अच्छे कपड़े मिलते हों, उसे अपने बच्चों की परवरिश ठीक से हो रही हो, उसको सुकून से सोने को रात को मौका मिलता हो, वो किसी भी कीमत पे बंदूक उठाने को तैयार नहीं होगा। लेकिन जब आप उसकी इन चीज़ों में कमी करेंगे, तो न सिर्फ उसका भी रगबत बढ़ेगी इन चीज़ों की तरफ, जब वो पड़ोस में देखेगा कि अच्छे से खा रहा है, अच्छे से रह रहा है, तो उसका भी दिल ये चाहेगा कि मेरे बच्चे भी इसी तरह से अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, मैं भी अच्छा खाना खाऊं, मैं भी अपना लाइफ स्टाइल चेंज करूं। तो उसको देख कर जो उसके अंदर एक हसद पैदा होता है, एक मादा हसद का पैदा, वो कहीं ना कहीं उसको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है, और उस वक्त वो लोग जो हुकूमत के खिलाफ सियासी ग्रुप होते हैं, वो उनका इस्तेमाल करके उनको दहशतगर्दी की तरफ ले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि दहशतगर्दी का मामला हो चाहे मईशत का मामला हो, इसको आप अलग अलग नहीं कर सकते, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आपको दोनों प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा। बहरहाल इस बात की मुबारकबाद दी जा सकती है कि ईरान ने अफगानिस्तान के साथ जो अमल किया, और हम जानते हैं कि हिंदुस्तान ने भी, यहाँ से हमने DTC की बसेस की तरह वहाँ बसेस भेजी, वहाँ के ड्राइवर्स को हिंदुस्तान में लाके ट्रेन किया, इंजीनियर्स भेजे, बिजली के लिए वहाँ पावर हाउस बनाए, तो जिसके अंदर जितनी सकत है। ईरान भी जाहिर से बात है कि पूरी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, हिंदुस्तान भी नहीं ले सकता, सबके अपने अपने मसाइल भी हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी हैं। सेंट्रल एशिया के मुल्कों की हालत आप पहले से जानते हैं, आधे से ज़्यादा मुल्क ईरान अफगानिस्तान जैसी पोजिशन तो नहीं, लेकिन कमोबेश उसी पोजिशन में वो भी नज़र आते हैं हमें। पाकिस्तान की भी मईशत आप जानते हैं कि किस तरह से चल रही है, क्या माहौल है, और वहां तो मसला यह भी है कि बेचारी सरकार इतनी कमजोर है कि वहां दूसरे ग्रुप उन पर ज्यादा हावी हो जाते हैं कभी कभी। तो जहां तक फिर भी इन मुल्कों ने जो कदम बढ़ाया उसके साथ, अफगानिस्तान के साथ, तो ये एक सराहनीय कदम है। मैं समझता हूं कि इन मुल्कों को और ज्यादा इस तरफ ध्यान देना होगा अपने मसाइल के साथ साथ, और अफगान हुकूमत को
बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब, मैं फिर
ध्यान देना चाहिए कि उन्हें पहले अपने मसाइल, अपनी कौम के मसाइल, अपनी आवाम के मसाइल को गौर से देखना चाहिए, उनके लिए पहले पॉलिसी मरतब करना चाहिए, न कि डोनर्स की या किसी और की उससे हमें पॉलिसियाँ बनानी चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। चलते हैं एक बार फिर काबुल। ज़फ़र मेहंदी साहब इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, यानी अशरफ गनी साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि हम आइंदा साल जो ब्रसल्स में इस सिलसिले की कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उस वक्त तक ये वादा करते हैं कि अफगानिस्तान में माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। एक साल में क्या जादू कर लेंगे आपके ख्याल में?
देखिए, जब अशरफ गनी ने इख्तदार संभाला लास्ट ईयर, तो अफगानिस्तान बिल्कुल एक अच्छी हालत में नहीं था, जिसको हम कह सकते हैं बिल्कुल बुरी हालत में था, क्योंकि जो पिछले 10 साल 12 साल में जो यहाँ पे करप्शन हुआ, यहाँ पे गवर्नेंस खत्म हुई, रूल ऑफ लॉ खत्म हुआ, ह्यूमन राइट्स नहीं था, वुमेन्स राइट्स नहीं था, वो काफी चैलेंजेस थे उसके सामने। और पिछले एक साल में जो यूनिटी गवर्नमेंट है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, उन्होंने काफी काम किया है, जो कि अशरफ गनी ने अपनी स्पीच में मेंशन भी किया। जैसे उन्होंने कहा कि जो मिनिस्ट्रीज में रिक्रूटमेंट होती थी उसमें रिफॉर्म आया है, कस्टम्स में बहुत करप्शन था उसमें रिफॉर्म आया है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो साइन होते थे मिनिस्ट्रीज की तरफ से उसमें हमने काफी चेंजेस लाए हैं, वुमेन्स राइट्स काफी इम्प्रूव है। तो उन्होंने कहा कि एक साल जो ब्रसल्स तक काफी इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, खासकर उन्होंने कहा जो बजट होगा बहुत अच्छा होगा, ह्यूमन राइट्स में काफी इम्प्रूवमेंट हुई होगी, और ये चीजें उन्होंने साल में, देखिए ये अफगानिस्तान है, कोई कोई एक और इंडिया या पाकिस्तान है, कोई और मुल्क नहीं है, यहाँ पे काफी चैलेंजेस है, जो अफगानिस्तान की जो माली इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो अफगानिस्तान बिल्कुल एक डिपेंडेंट है, डोनर कंट्रीज पे डिपेंडेंट। उसमें भी आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज का एक प्लॉय था, एक उन्होंने एक कोशिश की कि अफगानिस्तान को इस तरह से हम लोग डिपेंडेंट बनाएं कि वो खुद अपने पाँव पे इतना चल सके। ये एक चीज होता है, क्योंकि अगर आप किसी कंट्री को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, वहां पे अपनी जो है फुट होल्ड बनाना चाहते हैं, तो पहली बात है वहां की इकोनॉमी को वीक करना। तो जो भी है, जिसकी जो भी वजह है, लेकिन जो 1 साल खुद को खुद पे डेडलाइन दिया उन्होंने, मेरे ख्याल में ये काफी कम डेडलाइन है, क्योंकि अगर कोई बंदा 12 साल में नहीं कर सका कंट्री को रिवाइव, तो 1 साल में ये सब नहीं हो सकता। लेकिन काफी हद तक काम हुए हैं 1 साल जब से सितंबर में इकतदार संभाला, और काफी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं। आपको ये समझना होगा कि कोएलिशन गवर्नमेंट है, दो ग्रुप्स है उसमें, एक ग्रुप अब्दुल्ला का है, एक ग्रुप गनी का है, और ऐसे ग्रुप ऐसे ऐसे सिचुएशन में काफी रिफॉर्म्स का होना बहुत मुश्किल है। जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, अभी काफी जो डोनर कंट्रीज है उन्होंने कंडीशन रखी थी कि जब तक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, जब तक इलेक्शन के लॉज में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, तब तक हम शायद आपको और पैसे न दे सकें। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि एक ग्रुप जो है किसी एक कंडीशन किसी एक रिकमेंडेशन पे एग्री करता है, दूसरा ग्रुप कहता है नहीं, हम ये नहीं मान सकते। तो काफी चैलेंजेस है अशरफ गनी के सामने, लेकिन अभी हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जितना हो सके उतना प्रोग्रेस हो सके अगले साल तक, बल्कि अभी अभी 2-3 साल और है गवर्नमेंट के, और उम्मीद कर सकते हैं कि आगे प्रोग्रेस होगा।
जी, एक बार फिर चलते हैं कराची स्टोर, जहाँ पर मौजूद हैं आगा मसूद हसन साहब। आगा साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप देखें कि जो टोक्यो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ जहाँ एक तरफ ये ऐलान किया गया था कि 2015 तक अफगानिस्तान को 16 अरब डॉलर की मदद फराहम की जाएगी, वहीं अमेरिका ने ऐलान किया था कि अफगानिस्तान हमारा ना नेटो अलाई या इत्तेहादी भी है। इत्तेहादी होने का मतलब ये है कि इत्तेहादी मुल्क की हर तरह से मदद की जाए, उसके फौजियों को ट्रेनिंग दी जाए, उसको असलाह फराहम किया जाए, अफगानिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ दहशतगर्दी और बदअमनी का बोलबाला है, इसका खात्मा करने के लिए बदअमनी और दहशतगर्दी का, उसकी हर तरह से मदद की जाए। न सिर्फ ये कि अमेरिका ने कोई असलाह नहीं दिया अपने ना नेटो एलाई को, बल्कि उसके फौजियों की तरबियत भी नहीं की अफगानिस्तान की। तो ये कैसा ना नेटो एलाई अफगानिस्तान है अमेरिका का, और क्यों अमेरिका ने वादा करने के बावजूद भी न तो तरबियत की अफगान फौजियों की, और ना ही उसे जदीद तरीन सोफिस्टिकेटेड असलहे फराहम किए?
रजी साहब, मैं ज़रा सा माजरत के साथ मोतबाना मैं आपकी इस बात से इतफाक़ नहीं करता। अमेरिका ने नेशनल अफगान आर्मी की बड़ी तरबियत की है, और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि बड़े बड़े कोर्सेज हुए और उनको सिखाया गया, बड़े ज़बरदस्त किस्म के हथियार भी उनको फराहम किए गए। लेकिन बात दरअसल ये है कि अफगानिस्तान में काबिज़ फ़ौज अभी तक मौजूद है, और ये जो अमेरिकी फ़ौज मौजूद है उसकी वजह से वहाँ पर गड़बड़ है, वहाँ पे बेचैनी है। और आपको ये भी मालूम है कि तालिबान किसी और के ख़िलाफ़ नहीं लड़ रहे, तालिबान तो काबिज़ फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनको अशरफ गनी से कोई वो नहीं है। हो सकता है कि अशरफ गनी जो है वो अमेरिका की लाइन को टो करें, या इससे पहले करजाई ने टो की थी, लेकिन उनका तो बुनियादी मकसद ये है कि जो गैर मुल्की फ़ौजी हैं इनको यहाँ से जाना चाहिए, इसके बाद हम जो है बातचीत करने को तैयार हैं। मरी में जो बातचीत हुई थी उसका बुनियादी बुनियादी इशू यही था कि मतलब वी आर रेडी टू टॉक, वी आर रेडी टू ज्वाइन द गवर्नमेंट, लेकिन अंटिल एंड लेस के दे हैव टू वेकेट, द अमेरिकन्स हैव टू वेकेट। और उस पूरे कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन्स भी मौजूद थे और चाइनीज भी मौजूद थे। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तक के अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौजें मौजूद हैं, उस वक्त तक अगर हम ये समझ रहे हैं कि अमन कायम हो जाएगा और इलाके जो ममालिक हैं उनके तावन से कोई नई तब्दीली आएगी, मैं कम से कम एक तारीख के मामूली से तालीम की हैसियत से, और जिन्होंने अफगानिस्तान को पहले भी देखा अब भी देखा, तरक्की के ज़माने में जब कम्युनिस्ट रेजिम था उसको भी देखा, सरदार दाऊद का मैंने भी इंटरव्यू किया, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं नहीं समझता कि एक ट्राइबल सोसाइटी में कोई इतनी जल्दी कोई तब्दीली आ सकती है। और आपको मालूम है कि $1 ट्रिलियन जब खर्च हुआ अमेरिका का, तो अमेरिका ने ये कहा था कि हम यहाँ पर जमहूरियत लेकर आएंगे, यहाँ पे पूरी सोसाइटी को तब्दील कर देंगे। लेकिन आपको मालूम है कि अफगानिस्तान का जो कल्चरल रूट्स है वो बड़े मतलब के गहरे हैं। वो कम से कम ये है कि मगरिब की ये सारी जो जमहूरियत है वो फौरन मतलब ये कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बन जाएगी और उसके अंदर जो है सब सिविलाइज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अमेरिका ने पैसे दिए, रशीद दोस्तम जो आजकल वाइस प्रेसिडेंट है इन्होंने कितने पैसे लिए, करजाई साहब ने किस तरह लूट किया, वली करजाई ने किस तरीके से लूटा अफगानिस्तान को। और दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान का जो एक और बुनियादी मसला यह है कि کہ افغانستان میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ڈیولپ کر سکتی ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کی بتا رہا ہوں, افغانستان کے اندر جو منرل ریسورسز ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر صرف اس پہ ہی توجہ دیا, جیسے کہ چین وہاں پہ توجہ دے رہا ہے, لیکن ابھی تک جو ہے نا جس طریقے سے وہاں پہ کھدائی ہونی چاہیے, وہاں سے سونا کاپر نکال کے جو ہے فروخت کیا جائے, وہ بھی ابھی کام شروع نہیں ہوا. دوسرا ایگریکلچر سیکٹر ہے, ایگریکلچر سیکٹر میں جو ہے ابھی تک کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی. اگر ایگریکلچر سیکٹر ہی کو مطلب یہ کہ مضبوط بنا دیا جائے, وہاں پہ ایسے ذرائع پیدا کیے جائیں, افغانستان میں پانی کی تو کوئی کمی نہیں ہے, لیکن اگر افغانستان کے اندر ایگریکلچر سیکٹر کو مضبوط کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غریب عوام ہیں, جو رورل ایریاز میں رہ رہے ہیں, جو دیہی علاقوں میں رہ رہے ہیں, جو پہاڑوں کے پیچھے رہ رہے ہیں یا پہاڑوں کے سائے میں رہ رہے ہیں, ان کے لیے تو بڑی تقویت کا باعث ہوگا. تو میری اپنی رائے یہ ہے کہ افغانستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ کہ ابھی تک وہ اتحاد نظر نہیں آتا کہ جس اتحاد کے ذریعے جو ہے افغانستان کے معنوی تبدیلی آئے. مثال کے طور پر یہ اشرف غنی صاحب جو ہے ورلڈ بینک کے آدمی ہیں, ہی از اے گریٹ اکنامسٹ. اس سے پہلے افغانستان پہلے وہ کراچی میں مطلب یہ کہ ملازمت کرتے تھے, اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ورلڈ بینک میں چلے گئے. میں اشرف غنی کی خلوص, ان کی نیک نیتی سے مجھے پورا اتفاق ہے, وہ واقعی افغانستان میں تبدیلی چاہتے ہیں, ہی از اے اکنامسٹ, اور ان کی جو سوچ کا انداز ہے وہ بہت دور کا ہے, مطلب ہی از لوکنگ فار اہیڈ ٹو برنگ اباؤٹ چینج ان افغانستان, ٹو برنگ ٹو ایلیمینیٹ دا پاورٹی. دس از ہز فلاسفی. لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں پر جو وار لارڈس ہیں وہ ابھی تک طاقتور ہیں, ابھی تک جو ہے وہ اپنا ابھی تک تو کابینہ جو ہے نہیں بنی. اور پھر یہ کہ افغان نیشنل آرمی کا جو میں نے آپ کی خدمت عرض کیا, افغان نیشنل آرمی کے اندر اب بھی مطلب یہ کہ لوگ چھوڑ کے طالبان کے ساتھ ملتے ہیں, تو افغان آرمی جو ہے اس کو بھی ضرورت ہے, پیسوں کی ضرورت ہے, لیکن اب پیسے کہاں سے آئیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ڈونر ممالک جو ہیں خود اپنے مسائل سے اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں اور کہ وہ افغانستان کو, میں نے تو اشرف غنی صاحب نے تو پہلے 4 بلین ڈالر کی بات کی تھی, ہی وانٹڈ 4 بلین ڈالرز, لیکن ایون امریکنز اینڈ دا یورپین یونین وچ از انڈر سٹریس بیکاز آف دا ڈسپلیس پرسن فرام سیریا اینڈ فرام عراق, دے ول ناٹ گیو یو ایون 2 بلین ڈالر. تو میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ ان کو چاہیے, ٹھیک ہے ہمارے بھائی نے افغانستان سے یہ بالکل صحیح کہا کہ افغانستان کی پورا وجود جو ہے وہ ڈونر ممالک پر ہے اور ڈونر اکنامی ہے, لیکن ڈونر اکنامی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہاں پر ڈیولپمنٹ تو ہونی چاہیے. اتنا تو نہیں ہے کہ سب چیز کرپشن کر کے جو ہے نا وہ بالکل آپ بے دست و پا ہو جائیں اور مختلف ممالک سے بھیک مانگیں. اب بھی افغانستان کے اندر بہت امکانات ہیں, اور میں سمجھتا ہوں جیسے پاکستان ہے, چین ہے, ہندوستان ہے, سینٹرل ایشیا, ایران بہت مدد کر سکتا ہے, ایران کے پاس اپنی نو ہاؤ بہت اچھی ہے, پھر سینٹرل ایشین کے بعض اسٹیٹ ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ کام اچھی طریقے سے ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ بین الاقوامی جو ڈونرز ہیں ان پر اگر آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں اپنی اکنامی کی بحالی کے سلسلے میں, اپنی خوشحالی کے سلسلے میں, تو یہ ایک خواب ہے, اور یہ بالکل ایسی بات ہے کہ صحرا میں آپ اذان دے رہے ہیں, آپ کو خود اپنے پار پر کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں بالکل آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک آپ ریجنل تعاون کو مضبوط نہیں بنائیں گے, اپنی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں ان ممالک سے, ان کو آپ نظر انداز کرتے ہوئے لک اہیڈ کہ کس طریقے سے ہم آگے چل سکتے ہیں. اگر ہم نے یہ فلسفہ اختیار کر لیا اور اگر ہم نے یہ سوچ اختیار کر لی اپنے افغان بھائیوں کی جو غربت, افلاس, تنگ دستی, محرومی کو اگر ہم نے خیال کر لیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اگر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ ہمارا دوست ہے, یہ ہمارا دوست نہیں ہے, یہ ہمارا دشمن ہے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں صورتحال میں کوئی تبدیلی آئے گی.
جی بہت شکریہ آپ کا. اقتدار محمد خان صاحب, پروفیسر صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ 2015 ظاہر ہے کہ بڑا معروف سال ہے حوالے سے کہ امریکہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنی ساری فوجیں نکال لیں گے, کتنی توقع کی جا سکتی ہے؟ اس سے پہلے بھی امریکہ وعدہ کر چکا تھا کہ فلاں سال میں نکالیں گے, اور اب ایسے بیانات آ رہے ہیں نیٹو کی طرف سے بھی, امریکہ کی طرف سے, کہ کچھ فوجیں باقی رکھیں گے. تو یہ جو انخلا کے تعلق سے جو باتیں آ رہی ہیں, کتنے پر امید ہیں آپ؟
دیکھیے, امریکہ کے معاملے میں کسی بھی بات پر آپ یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ سامنے نہ آ جائے, چونکہ ان کے یہاں روز پالیسیاں بدلتی ہیں. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ امریکہ کسی بھی مسلم ملک کا دوست نہیں ہے, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے ایران ہو, چاہے سعودی عربیہ ہو, چاہے افغانستان ہو. अगर सऊदी अरब समझता है कि अमेरिका उनके दोस्त हैं, ये उनकी गलत फहमी है। अगर पाकिस्तान समझता है अमेरिका उनके दोस्त हैं, तो ये गलत फहमी है। और ईरान के साथ तो खैर अच्छे ताल्लुकात ऐसे हैं ही नहीं उनके, अफगानिस्तान का मसला भी। तो पहले तो ये कि मुस्लिम ममालिक के मामले में जो उनकी पॉलिसी बनती है, उस पॉलिसी पर पूरी तरह से यकीन कर लेना हमारी थोड़ी सी ये बचपना, या हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी नाआगबत अंदेशी का मामला है। अमेरिका कहता क्या है, करता क्या है, जाता किधर है, बताता किधर है, ये हम लोगों के सामने बहुत पहले से ये सारी चीज़ें आती रही हैं। तो इसलिए अमेरिका का ये कह देना कि 2015 तक हम पूरी तरह से खाली कर देंगे या कुछ हिस्सा छोड़ेंगे, कुछ हिस्सा रखेंगे फ़ौज का, मुझे नहीं लगता कि जब तक ये इस पर अमल ना हो जाए, जब तक इस पर पूरी तरह से यकीन किया जाए। मैं ज़रा सा यहाँ आपके सवाल से हटकर एक बात करूँ कि अभी हमारे जो पिछले दोनों तजिया निगार बात कर रहे थे, ख़ास करके कराची से जो तजिया निगार बात कर रहे थे, मुझे ये लग रहा था कि कभी कभी उनकी तजिया निगारी में जो बैलेंस होना चाहिए था, तवाजुन, वो नहीं, बिगड़ रहा था। कभी वो पिछले 10 साल की सरकार के लिए उसमें सारी बुराइयां नज़र आ रही थी और एक साल की सरकार में सारी खूबियाँ नज़र आने लगी थी। अगर आपको मालूम हो तो अमरीका ने पहले उनको लिया था 10 साल तक, उनसे चाहा अपना काम कराना, और आखिरी 2-4 साल जो उनके थे उसमें उन्होंने अमरीका को आंखें दिखानी शुरू कर दी थी। शायद उन्होंने चूँकि तालिबान से बात करने की बात शुरू कर दी थी, उन्होंने वहां के आवाम के मसाइल को सामने लाना शुरू कर दिया था। जब अमेरिका को लगने लगा कि इनसे अब हमारा मसला हल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने एक नए अपने यहाँ के जो मुलाजिम जो कराची में भी रहे और वहां रहे, उनको वहां भेज दिया। यकीनन अमेरिका में बैठ के आए हों, अफगानिस्तान में बैठ के, सॉरी पाकिस्तान में बैठ के गए हों, या ईरान या हिंदुस्तान से जाए कोई वहाँ इलेक्शन लड़े, तो सीधी सी बात है कि अगर वो अफगानी है तो कुछ ना कुछ अफगानिस्तान के लिए उनके दिल में मोहब्बत होगी। लेकिन जो जितनी ज़्यादा मदद जिस जगह से लेके आएगा, उसको उसकी उतनी ही ज़्यादा पॉलिसियों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप जहाँ तक बात कर रहे हैं करजई साहब के ज़माने में भी हम देखते हैं कि देखिए हर आवाज़ सरकार में कुछ ना कुछ आपको कमियां नज़र आ जाएंगी, कुछ ना कुछ वहाँ पर ख़यानतें पब्लिक की अमानतों में नज़र आ जाएंगी। हम ये कैसे कह सकते हैं कि वहाँ सारी खराबियाँ थी, यहाँ कम खराबियाँ हैं? वहाँ भी कुछ खराबियाँ थी, यहाँ भी पॉलिसियों में, और मुझे ये लगता है कि उस सरकार के मुकाबले में ये सरकार ज़्यादा कमज़ोर है। जैसे खुद उन्होंने फरमाया कि दो बड़ी पार्टियों के कोलेशन से ये सरकार बनी है, किसी एक पर वो इत्तेफाक नहीं करते, किसी एक पर वो इत्तेफाक नहीं करते। तो इस वक्त तो उन्हें अपनी सरकार बना के रखना यही एक बड़ा मुश्किल मरहला है, ना कि वो पॉलिसियों पर सोचेंगे। तो पिछली सरकार में कम से कम ये तो था कि एक ही पार्टी की सरकार थी, या फिर कम से कम वहाँ भी एक प्रॉब्लम थी। मैंने शायद पहले भी कभी आपके तजिया पर जब बात आई तो मैंने कहा था उस ज़माने में भी कि जो हमारे करजई सरकार थी उसके अंदर आप देखिए बहुत से मिनिस्टर ऐसे थे जिनको करजई साहब नहीं चाहते थे, लेकिन बरतानिया का दबाव, जर्मनी का दबाव, फ्रांस का दबाव, अमेरिका का दबाव कि इनको आप अपने मंत्री उसमें परिषद में लीजिए, इनको अपनी कैबिनेट में लीजिए। अब जब वो उन मुल्कों के इशारों पर कैबिनेट में आएंगे तो वो कैसे सदर का कहना मानेंगे? कैसे वो तो चाहेंगे सदर पर खुद सुपर सीट करें। तो उस सरकार में भी जो हमें लग रहा था कि बिल्कुल इंतजार का सा माहौल था, वो नजर आ रहा था। इस सरकार के अंदर दूसरी प्रॉब्लम है कि दोनों लोग पावरफुल मिलके एक हुकूमत बना रहे हैं, तो अब उनकी अपनी नुक्ता नज़र है, अब्दुल्ला का चीफ एग्जीक्यूटिव का इनका अपना नुक्ता नज़र है, तीसरे रशीद दोस्तम भी हैं। ये सारी वो 5 चीज़ें हैं। आप देखिए तालिबान इनसे उस ज़माने में भी रहे, उस ज़माने में क्या हुआ आप देखिए, हिकमत यार साहब आए और तमाम वो उस वक्त जो रहा मामला उसमें रशीद दोस्तम की आवाम खिलाफ थी, ये एक छोटे से इलाकाई हिस्से पर इनका कंट्रोल था। अब्दुल्ला कोई बहुत बड़े उस वक्त लीडर नहीं थे अफगानिस्तान के एक। अब जब अफगानिस्तान ने अब्दुल्ला को भी ला दिया, रशीद दोस्तम को भी ला दिया, और अशरफ गनी साहब जो उस वक्त बिल्कुल नहीं थे, एक बड़े इकोनॉमिक्स की हैसियत से कहीं दूसरी उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे, उनको भी भेज दिया। तो आप खुद बताइए मुझे कैसे अफगानिस्तान में अमन आ जाएगी, जिन रशीद दोस्तम पे अटैक हो चुके हैं, जिन अब्दुल्ला को अपनी जान बचानी पड़ गई है, वो जब हुकूमत में बैठ जाएंगे तो वो ना तो अवाम का सोचेंगे भी, मैं जानता हूं कि उसमें से उनके हो सकता है ईमानदारी के साथ अवाम के लिए सोचें, लेकिन अवाम उन पर ट्रस्ट कैसे कर लेगी, अवाम उन पर कैसे भरोसा कर लेगी? और जब भरोसा नहीं करेगी तो जाहिर सी बात है इख्तलाफ आएगा। और फिर जैसा भी हमारे फाजिल मुकर्रर ने कहा था कि साहब अमरीका से इख्तलाफ था, पहले रशिया से उनका इख्तलाफ था, फिर अमेरिका से भी इख्तलाफ है। तो आप जब अमेरिका से इख्तलाफ है और अमेरिका इन लोगों को भी बिठा रहा है, अमेरिका अपनी फौज भी रख रहा है, तो कैसे वहां पर सुकून बरपा हो जाएगा?
बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, वक्त हमारा बिल्कुल अब ख़त्म होना चाहता है, बिल्कुल तकरीबन वक्त ख़त्म हो चुका है। हम आपसे माजा चाहते हैं और अपने दीगर दोनों मेहमानों के भी शुक्रगुजार हैं और अपने नाज़रीन के भी, प्रोफेसर इक्तदार साहब, आगा मसूद हुसैन साहब और इसी तरह ज़फ़र मेहदी साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, ज़ाहिर है कि निचोड़ इसका यही है कि जब तक अमेरिका और दीगर काबिज़ क़ुव्वतें मौजूद रहेंगी, अफगानिस्तान में बदअमनी बहरहाल बाकी रहेगी, और यही वो मौक़िफ़ है जो अफगान अवाम का भी कहना है और अफगानिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं मिन जुमला इस्लामी जमहूरी ईरान का भी कहना है कि अफगानिस्तान में बदअमनी की असल वजह अग्यार की मौजूदगी और अग्यार की मुदाखलत है। बहरहाल इसके बावजूद दोस्त मुल्कों को चाहिए, जैसा कि उन्होंने वादा किया है, कि अफगानिस्तान में अमन और तरक्की के मौके तलाश करके अफगानिस्तान की तरक्की और पेशरफ्त का रास्ता हमवार करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे अली बासिज़वी और दीगर साथियों को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।